ओम शांति। सभी एक साथ फिर से कहेंगे ओम शांति। माताओं की तरफ से आवाज नहीं आई, ओम शांति। आप सभी भाई बहने पिछले 2-3 दिनों से इस शांतिवन परिसर में रहकर इस सभागार में बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, राजयोग का अभ्यास भी कर रहे हैं, यहाँ की गतिविधियों को भी आप देख रहे हैं, तो उससे आप ये तो समझ ही गए होंगे आप सब कहाँ आए हैं। ये कोई साधारण स्थान नहीं है जहाँ आप आए हैं, ये एक बहुत बड़ा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहाँ स्वयं परमात्मा हम आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। यह ईश्वरीय परिवार भी है जहाँ परमात्मा और हम सभी बच्चे रहते हैं। यहाँ कोई गुरु की गद्दी नहीं है, यहाँ कोई उस प्रकार का पूजा पाठ जप तप या कोई क्रियाक्रम कुछ भी ऐसे जो मंदिरों में करते हैं वैसे नहीं है, परंतु एक बहुत बड़ा यज्ञ भी है। जैसे यज्ञ में आहुति डालते हैं तो परमात्मा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचा है, जिस यज्ञ में हम अपनी बुराइयों की आहुति डालते हैं, विकारों की आहुति डालते हैं, और इसी से ही कैसे विश्व का परिवर्तन होता है। तो खास व्यापारी वर्ग के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। आप में से कई ऐसे भाई बहने होंगे जो हमारे विभिन्न सेवा केंद्रों पर जाते रहते होंगे, लेकिन कई ऐसे भी होंगे जो पहली बार यहाँ पधारे हैं। लेकिन यहाँ जो कुछ भी आपने सुना अवश्य जीवन को बहुत प्रेरणाएं देने वाली बातें हैं, और अभी मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ वो सचमुच जीवन को पलटाने वाली बातें होगी। जीवन में प्रेरणाएं जब मिलती है और कैसे उससे हमारा जीवन ही पलट जाता है, वो इस अद्भुत जीवन कहानी से हम आपको सुनाएंगे, अवगत कराएंगे। आप सभी ये भी सोचते होंगे कि ये संस्था कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई, और अब तक कैसे ये आगे बढ़ रही है। तो इसका पूरा इतिहास आपको हम अभी सुनाना चाहेंगे, और ये इतिहास केवल संस्था का नहीं है, लेकिन ये इतिहास हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो फाउंडर है, स्थापक है, पिताश्री ब्रह्मा बाबा, उनका भी यह जीवन का एक बहुत सुंदर प्रसंग है या एक यात्रा है। कौन थे पिताश्री ब्रह्मा बाबा, कैसे उन्होंने अपने तन और मन और धन से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बीज रोपा, और आज हम देख रहे हैं कैसे उनके ही सानिध्य में यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय कितना आगे बढ़ता जा रहा है। तो पिताश्री ब्रह्मा बाबा जिनको परमात्मा ने नाम दिया प्रजा पिता ब्रह्मा, सारी प्रजा के वो पिता कहलाए, आदि पिता ब्रह्मा जिसको रचयिता मानते हैं। लेकिन कैसे ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई, ब्रह्मा ने कैसे यह संसार रचा, वो भी एक अद्भुत कहानी है। तो पिताश्री ब्रह्मा बाबा कौन थे जिन्होंने एक बीज डाला और आज 140 देशों में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखाएं सारे विश्व में फैली हुई है। एक वट वृक्ष की तरह सारे संसार में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ब्रांचेज हैं। तो कौन थे पिताश्री ब्रह्मा बाबा, इनका पूर्व नाम क्या था? इनका पूर्व नाम था दादा लेखराज, और लखीराज बाबू के नाम से आप एक प्रसिद्ध जौहरी थे, हीरे जवाहरातों के जेवर बेचते थे। उस जमाने में जबकि भारत में अंग्रेजों का राज्य था, भारत में कई राजाएं महाराजाएं राज्य करते थे, ऐसे समय पर आपका ये बहुत बड़ा व्यापार हीरे जवाहरातों के जेवर बेचने का था, और आपके जो ग्राहक थे वो भी कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, लेकिन राजा महाराजा लोग थे, और साथ साथ अंग्रेज थे। कलकत्ता में आपकी दुकान थी, बहुत बड़ी शोरूम, और वहाँ अक्सर अंग्रेज आकर के बहुत गहने खरीदते थे हीरे जवाहरातों के। यहाँ तक कि क्वीन एलिजाबेथ भी जब भारत आई थी तब इनके ही दुकान में गए थे और बहुत हीरे खरीदे थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा उनका व्यापार था। तो व्यापार तो बहुत बड़ा था और सब लखीराज बाबू, लखीराज बाबू इस नाम से बाबा को पुकारते थे। इनका परिवार भी बहुत ही सुखी था, 5 बच्चे थे, इनकी 3 बेटियां 2 बेटे थे, और जब लगभग उनका विवाह सबका हो चुका था और पारिवारिक जिम्मेदारियों से थोड़े फारिग हो रहे थे, उनकी उम्र 60 साल की हो गई, तब उनके मन में बहुत कुछ वैराग आने लगा। वैसे जीवन काल में आप भक्ति भी बहुत करते थे, विष्णु उनके इष्ट देव थे, गीता का पाठ नित्य किया करते थे, पक्के वैष्णव थे, कट्टर वल्लभाचारी श्रीनाथ के भक्त थे, और जो भी उनके द्वार पर आता वो हमेशा दान दक्षिणा देते रहते थे। कोई भी उनके द्वार पर आता तो हाथ खाली नहीं जाता था, और इसलिए बहुत दानी थे। धनी तो थे ही, दानी भी थे, भक्त भी थे, और साथ साथ समाज में इनका बहुत बड़ा नाम था। रोज सवेरे सवेरे अपने घर में सत्संग किया करते थे और सबको गीता का पाठ सुनाते थे। बड़े बड़े संत महात्माएं इनके घर में आकर के भी रहते थे, इनकी भक्ति से बहुत खुश होते थे। तो एक और उनका व्यापार, दूसरी ओर उनकी भक्ति। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी बाबा के मन में सत्यता की अंतर में बहुत बड़ी इच्छा थी, सत्यता को जानने की। सत्य क्या है, ईश्वर कौन है, हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं इस संसार में, आखिर मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें जाना कहाँ है। गाते तो हैं, कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं, दो दिन के मेहमान हैं, फिर कहते ईश्वर के घर से आए हैं, ईश्वर के घर जाना है, लेकिन वो ईश्वर का घर है कहाँ, और इस संसार में हम क्यों आए हैं, ये सारे प्रश्न उनके मन में थे। और उस सत्यता को जानने के लिए बाबा ने अनेक प्रकार के शास्त्र पढ़ डाले थे, जीवन में 12 गुरु किए थे उन्होंने, और हर एक से यही प्रश्न पूछता रहता था, लेकिन कहीं से भी उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और इसी खोज में उन्होंने भक्ति भी अपनी बहुत ऊंचे रूप से की। लेकिन अचानक एक दिन उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। उनकी उम्र 60 वर्ष की हो रही थी, और 60 के लिए कहते हैं 60 में रिटायरमेंट होती है, तो वो भी सोच रहे थे कि बस अभी ये धंधे से मैं फारिग हो जाऊं, कुछ वैराग्य सा भी आने लगा, और भगवान से यही कह रहा था, हे भगवान अब मुझे सही रास्ता बताओ, मैं क्या करूं। तो उसी समय बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। उनके ही ध्यान में बैठे थे, उनका ही ध्यान करते थे, उनकी ही पूजा करते थे, विष्णु के कट्टर भक्त थे, और कैसे उनके ध्यान में मग्न थे, और अचानक उनको साक्षात्कार हो गया विष्णु चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु उनके सम्मुख आकर के उपस्थित हुए, दर्शन दिया। बाबा तो देखते ही देखते उसी में खो गए, और फिर विष्णु से उनको बहुत सुंदर एक वरदान मिला। वो वरदान क्या था, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, तुम भी मेरे जैसे हो। ये वरदान उनको विष्णु से मिला, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, चार भुजाधारी विष्णु उनके आगे आके दर्शन दिए और ये वरदान दिया। और देखते ही देखते बाबा ने देखा विष्णु के कई रूप उनके सामने आते गए, कई मंदिर है विष्णु के, और एक एक रूप उनके सामने विष्णु का आता गया, सब ने एक ही वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम। ये 1936 की बात है, आज से 82 वर्ष पूर्व 1936 में ये अनुभव बाबा को हुए। और जैसे विष्णु का साक्षात्कार हुआ और ये वरदान मिला, तो मेरे जैसे हो, तो ध्यान से उतरकर बाबा के का अंदर में दिमाग चलने लगा, मैं इन जैसे कैसे हूँ, मैं तो इनका भक्त हूँ, इनकी पूजा करता हूँ, इनका ध्यान करता हूँ, ये तो मेरे इष्ट हैं, मैं तो इनके आगे तो सेवक हूँ, मैं इन जैसा कैसे हूँ। लेकिन अब कौन उनको ये समझाए या बताए कि इस वरदान का राज क्या था, कि तुम तो मेरे जैसे ही हो। तो उसने अपने गुरु से ये प्रश्न किया, जो उस समय उनका गुरु था, कि ऐसा मुझे साक्षात्कार हुआ और विष्णु से मुझे ये वरदान मिला, तो मेरे जैसे हो, तो इसका मतलब क्या है। तो गुरु ने उनको कहा कि हो सकता है इसका ये मतलब हो कि परमात्मा भगवान आपसे कुछ बहुत बड़ा काम करवाना चाहते हैं, तो आपको इतना बड़ा काम जो ईश्वर का है वो आपको करना है, इसलिए आपको ये वरदान दिया होगा कि आप मेरे जैसे हो। तो बाबा को आया कि मुझे भगवान का कौन सा काम करना है, मैं तैयार हूँ, जो मुझे कार्य भगवान देंगे मैं वो करने लिए तैयार हूँ, लेकिन कौन सा कार्य, क्या करना है मुझे। मैं अपनी भक्ति भी करता हूँ, मैं अपना धंधा भी बहुत ईमानदारी से चलाता हूँ, बहुत मेहनत भी करता हूँ, तो ऐसा कौन सा कार्य है जो मुझे भगवान कहते हैं करने लिए मैं तैयार हूँ। तो गुरु ने उनको कहा कि उसके लिए आप थोड़ा अपने व्यापार से फारिग होकर के एकांतवास करो, एकांत में कहीं चले जाओ और एकांत में आप फिर से ध्यान लगाओ और आपको और कुछ संदेश मिलेंगे भगवान के कि आपको क्या करना है। अब गुरु भी कैसे बता सकता है, पर ये तो बता सकता था, बताया कि इसलिए एकांतवास में चले जाओ और उस शांति के अनुभव में आपको और अनुभव होंगे। तो बाबा हैदराबाद सिंध में रहते थे, सिंध उस समय भारत का हिस्सा था, लेकिन पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, लेकिन वो सब एक अखंड भारत था, सिंध हैदराबाद में रहते थे। तो बाबा को विचार आया कि मैं एकांतवास के लिए बनारस चला जाऊं। बनारस में उनके मित्र रहते थे, गंगा घाट के पास ही उनका घर था, तो बाबा को लगा कि मैं बनारस जाकर एकांतवास अपने मित्र के कोठी में करूंगा और गंगा घाट के सामने बैठकर गंगा घाट पर मैं और अनुभव करूंगा, शांति का अनुभव करूंगा। तो कुछ समय से लिए अपने परिवार वालों से छुट्टी लेकर बाबा बनारस चले गए। और जब बनारस गए तो बनारस में बाबा को कुछ विचित्र साक्षात्कार हुए। 3 मिनट हम सब परमात्मा की याद में बैठेंगे।
अपने सुकर्मों के बलदान ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, विनाश खड़ा आगे
तो बाबा को विचित्र साक्षात्कार हुए, जिनमें पहला साक्षात्कार था इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार, जिसमें बाबा ने देखा ये सारा कलयुगी संसार, इतनी बड़ी दुनिया, ये कैसे नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है, तीन रूपों से नष्ट हो रही है, ये देखा बाबा ने। पहला रूप देखा अणु युद्ध के द्वारा, एटम बॉम्ब गिरते जा रहे हैं और जहां पर वो गिर रहे हैं वहां अग्नि फैल रही है, आग ही आग फैल करके सब कुछ जला रही है, सब कुछ खाक में मिला रही है, ये बाबा ने देखा। फिर थोड़े समय के बाद बाबा ने देखा एक ग्रह युद्ध का वातावरण, जिसमें कैसे लोग एक दो को मार रहे हैं, काट रहे हैं, गले काट रहे हैं, बंदूकें चला रहे हैं, तलवारें चल रही है, और देखते ही देखते बाबा ने देखा खून की नदियां चारों ओर बह रही है और लोग मर जाते, मर करके एकदम मुर्दे, सब मुर्दे हुए पड़े हैं, एक शमशान घाट के रूप में सारा संसार बन गया है। बाबा को कुछ समझ में नहीं आया, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये क्यों ये सब देख रहा हूँ, क्या ये दुनिया ऐसे खत्म हो जाने वाली है। अब बाबा के मन में सोच ही चल रहा था कि अचानक तीसरा स्वरूप विनाश का बाबा ने देखा, और वो स्वरूप था प्राकृतिक आपदाओं द्वारा विनाश। पांचों ही तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांचों ही तत्व इतना कहर मचा रहे थे, जो देखते ही देखते बाबा ने देखा सब कुछ जलमग्न हो गया, जैसे प्रलय, संसार में एकदम प्रलय हो गए। ये बाबा ने साक्षात्कार में देखा, जैसे वो सामने अपनी नजरों के सामने देख रहे हैं, ऐसे बाबा ने अनुभव किया। तो बाबा तो बहुत डर गए, रोने भी लगे, हे भगवान ये मुझे क्या दिखा रहे हो, क्या ये दुनिया ऐसे खत्म हो जाएगी, फिर तो भगवान ये दुनिया तुमने बनाई क्यों, प्रश्न उठेगा ना, ये खत्म होना है तो फिर बनाया ही क्यों, खत्म होने लिए क्यों बनाया, बनाना थोड़ी होता है अगर खत्म ही होना है तो। हे भगवान तुमको क्या पड़ी थी ये दुनिया बनाने की और ऐसे विनाश हो जाएगा, तो हे भगवान मुझे ये भी तो बताओ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि बाबा को तो वही बुद्धि में था कि आपको भगवान कहेंगे उनका कौन सा काम करना है, तो हे प्रभु मुझे ये बताओ मुझे क्या करना है, मैं तैयार हूँ, आप जो कुछ कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ, मुझे कुछ आदेश मिले। अब क्या आदेश मिले, उनको तो कुछ समझ में नहीं आया, खाली विनाश का ही साक्षात्कार किया, लेकिन इस साक्षात्कार से बाबा के अंदर वो वैराग्य और भी ज्यादा आने लगा। पहला शुरू हुआ थी लेकिन और भी ज्यादा वैराग्य आने लगा, और बस उनको लगा अभी मैं छोड़ दूं सब कुछ, लेकिन करना क्या है वो तो बताया ही नहीं। तो बाबा ने अपना फिर से वो कार्य जारी रखा, अपने इष्ट का ध्यान करते रहे एकांतवास में बनारस में। तो अचानक बाबा को एक दिन परम धाम का साक्षात्कार हुआ, एक अखंड ज्योति का महतत्व देखा, जैसे ये आकाश तत्व हम देखते हैं वैसे ही सुनहरे लाल प्रकाश का एक महतत्व, उसमें चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश देखा और उसमें छोटे 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 सितारे देखे। ये आत्माओं की दुनिया जिसको हम शांति धाम, परम धाम, मुक्ति धाम, मूल वतन, निराकारी दुनिया आदि नामों से याद करते हैं। और फिर बाबा ने क्या देखा कि वो वहाँ जो छोटे छोटे सितारे थे वो धीरे 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 करके नीचे उतरते गए, नीचे आते गए, नीचे वो उतरते गए, जैसे सितारे आकाश से जैसे उतर रहे हैं, ये बाबा ने देखा। और देखते देखते बाबा ने देखा वो धरती पर पहुंच गए, और धरती पर पहुंचते ही एक एक सितारा, क्योंकि वो एक एक आत्मा थी, वो एक एक आत्मा, वो एक एक सितारा धरती पर आते ही एक देवी या देवता का रूप धारण करता गया, एक देवी का उनको शरीर मिला या देवता का शरीर मिला, और धीरे धीरे बाबा ने देखा ये जो एकदम नष्ट हुई पड़ी थी दुनिया, एकदम प्रलय जैसी स्थिति हो गई थी, वो संसार धीरे धीरे बदलता गया बदलता गया बदलता गया, और देखते ही देखते बाबा ने देखा एक स्वर्णिम संसार, एक ऐसा सुंदर संसार, वो सतयुगी दुनिया जिसमें प्रकृति का चरम सौंदर्य वो बाबा ने देखा। कहां सब कुछ नष्ट हो गया था, सब जलमग्न हो गए थे, और कहां ये देखा बाबा ने एक सुंदरतम दुनिया, एक स्वर्गीय दुनिया जहां देवी देवताएं वास कर रहे हैं, श्री कृष्ण की दुनिया। आज सब जन्माष्टमी मना रहे हैं तो श्री कृष्ण की दुनिया को सब कितना याद करते हैं, वो दुनिया बाबा ने देखी, वैकुंठ की दुनिया, वो सुंदर नजारा बाबा ने देखा। और फिर क्या देखा कि उस सुंदर नजारे में एक सुंदर सा महल, जिस महल की दीवारें हीरों से जड़ी हुई थी, उनका प्रकाश सारे महल में प्रकाश दे रहा था, और वहां लक्ष्मी नारायण सिंहासन पर विराजमान है, और धीरे धीरे वो लक्ष्मी नारायण, श्री लक्ष्मी श्री नारायण सिंहासन से उठ करके बाहर आते हैं महल से बाहर, और बाहर इतना सुंदर बगीचा है जहां वो टहल रहे हैं। बहुत सुंदर अनुभव बाबा ने किया, और उसी समय उनको एक आकाशवाणी हुई, जैसे ये देख रहे थे उसमें खो गए थे, ऐसे सुंदर संसार में जो स्वर्ग है वो खो गए थे, और उसी समय एक आवाज उनको सुनाई दी, आकाशवाणी। उस आकाशवाणी में क्या शब्द सुने, लखीराज उठो जागो, इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद ऐसी सतयुगी सृष्टि आने वाली है, और ऐसी दुनिया तुमको बनानी है। ये भगवान ने उनको काम दिया कि ऐसी दुनिया तुमको बनानी है जो इस कलयुगी दुनिया के विनाश के बाद ऐसा संसार आएगा, सतयुग आएगा। अब तुम्हें ये कार्य करना है, ताली बजाओ, आने वाला है वो दुनिया, वो संसार आने वाला है। तो जैसे बाबा ने ये आवाज सुनी, आकाशवाणी जैसे हुई, तो बाबा को तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये दुनिया ऐसे बदल कर ऐसे स्वर्ग हो जाएगी और मुझे बनानी है। ये बड़ा काम दिया भगवान ने उनको, आपको बनानी है। तो बाबा ने सोचा मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे पास कौन सी ताकत है, धन की ताकत है पर कितना धन, मैं इसको संसार को बदल दूं ये तो मेरे वश की कैसे बात होगी। तो हे भगवान, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो मैं ऐसी सतयुगी दुनिया बनाऊं उसके लिए करना क्या होगा, वो भी तो मुझे बताओ। अब ये फिर कौन बताए, ये फिर आगे उनको एक जैसे असमंजस में छोड़ दिया। तो पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ, तत्त्वम का वरदान मिला, तो तुमको मेरे जैसा, तो मेरे जैसे हो, तो समझ में नहीं आया अभी कि एक बड़ा काम मिल गया कि तुमको ऐसी दुनिया बनानी है, इतना बड़ा काम, पर कैसे बनानी है वो तो बताया नहीं। तो सोचा कि अब मैं क्या करूं, लेकिन उनके घर से उनको निमंत्रण आ रहा था, उनके पोतरे का जन्म हुआ था तो घर भी जाना था, पोतरे की जन्म की खुशियां मना रहे थे सभी, वहां उनका जो पार्टनर था वो कलकत्ते में रहता था, दुकान उनका जो शोरूम था, जो हीरे जवाहरातों के जो जेवर थे वो कलकत्ते में उनकी दुकान थी, कोलकाता में, वहां ही अंग्रेज लोग आते थे जहाजों से और उनकी दुकान में आकर के खरीदते थे, और बाबा खुद भी राजाओं महाराजाओं के पास जाते थे, बाबा को निमंत्रण देते थे अपने महलों में। तो बाबा को लगा अब ये इतना बड़ा धंधा जो मेरा है वो मुझे समेटना होगा, क्योंकि भगवान ने तो मुझे बहुत बड़ा काम दे दिया है, अगर मैं ये धंधा ही करता रहूंगा तो ये सच्चे रत्नों का जो व्यापार भगवान हमें दे रहे हैं वो मैं कैसे कर सकूंगा। तो बाबा ने सोचा कि मैं यहाँ से یہ بنارس سے کلکتہ جاؤں گا، کلکتہ پاس تھا بنارس کے، کلکتہ جا کر میں اپنے جو پارٹنر ہے، بھاگیدار ہے، ان کو میں بتا کر کے اپنا بزنس بند کروں گا، دھندا میں بند کروں گا اور یہ بھگوان کا کاریہ میں شروع کروں گا۔ تو بابا وہاں سے کلکتہ گئے۔ اب کلکتہ میں گئے، ایک طرف بابا نے وناش دیکھا، دوسری طرف بابا نے ایک سورگیہ دنیا دیکھی، وہ آواز سنی کہ یہ دنیا تم کو بنانی ہے، اب اس کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو اپنے پارٹنر کو سب کچھ بتا دیا کہ اب میں یہ دھندا نہیں کر سکتا ہوں۔ اور ہیرے جو بابا جن کا اتنا اچھا پارکھی تھا ہیروں کا، وہ بابا کو ہیرے پتھر دکھائی دینے لگے، ساری درشٹی بدل گئی بابا کی، اتنا ویراگ آ گیا سنسار سے۔ تو اپنے پارٹنر کو سمجھا بجھا کر کے اپنا جو حصہ تھا وہ لے لیا، اور پارٹنر کی دکان تھی، وہ کہا بھی تم سنبھالو، باقی جو ان کا اپنا شیئر تھا وہ لے کر کے بابا واپس حیدرآباد سندھ آ گئے۔ تو حیدرآباد میں جب بابا پہنچے تو بالکل سمپل، کیا ان کی ٹھاٹ، ان کا ٹھاٹ ہوتا تھا، راجاؤں مہاراجاؤں سے ملتے تھے، راجائیں مہاراجائیں تو بابا کو کہتے تھے کہ بھگوان نے تو بہت بڑی بھول کی ہے، آپ کو راجا بنانا چاہیے تھا، کیونکہ بہت ان کا دبدبا تھا، بہت ان کا پربھاؤ تھا سماج میں۔ لیکن اب بالکل سمپل ہو گئے، سفید کپڑے، دھوتی کرتا بابا پہنتے تھے کبھی کبھی، لیکن ابھی تو ان کا پورا پہناوا ہی وہ ہو گیا۔ اور گھر آئے تو گھر والے بھی حیران ہو گئے کہ بابا کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیسے اتنا بڑا پریورتن آ گیا ہے۔ تو بابا کو بس دیکھتے ہی رہتے تھے۔ تو کیسے بابا اپنے گھر جا کر کے ایکانت واس میں اور چلے گئے، بنارس سے تو واپس آ گئے لیکن اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں ہی بیٹھتے تھے اور اپنے اشٹ کا ہی دھیان کرتے تھے، بھکتی کرتے تھے بس، ان کا اور کچھ بھی سنسار کی باتوں میں من نہیں لگتا تھا۔ تو کیسے ایک دن کی بات ہے کہ بابا کو جوتی کا ساکشاتکار ہوا، پرم جوتی، پرماتما جو نراکار ہے، جوتی سوروپ ہے، سدا شیو ہے، کلیانکاری ہے، اس پرم جوتی کا، پرم آتما کا بابا کو ساکشاتکار ہوا۔ اور بابا نے دیکھا ایک اتنا سندر پرکاش، وہ پرکاش کا سوروپ، اور دھیرے دھیرے وہ پرکاش اتنا پیارا تھا، اتنا من بھاون تھا، جو بابا اس پرکاش کو دیکھتے ہی رہ گئے، دیکھتے ہی رہ گئے، دیکھتے ہی رہ گئے۔ اور دیکھتے دیکھتے بابا نے دیکھا وہ پرکاش دھیرے دھیرے ان کے نزدیک آتا گیا، ان کے نزدیک آتا گیا، اور نزدیک آتے آتے بابا نے دیکھا کہ کیسے شیو نراکار پرماتما وہ ان کے نزدیک آ کر ان کے اندر چلے گئے، ان کے اندر سما گئے، ان کے اندر جیسے اندر میں سما گئے، ایسے بابا نے انوبھو کیا۔ اور بابا کی آنکھیں بند تھی، لیکن ان کے پریوار والوں نے دیکھا یہ بابا کو کیا ہو رہا ہے، آنکھیں بند اور چمک، اتنی چمک، ان کا چہرہ اتنا چمک رہا ہے جو بات مت پوچھو، چاروں اور لائٹ ہی لائٹ۔ ان کے پریوار والوں نے دیکھا اور بابا ایک دم شانت مدرا میں، ایک دم جیسے کھوئے ہوئے مدرا میں تھے۔ اور پھر جیسے نزدیک گئے ان کے جو بہو بیٹیاں، پورا پریوار تھا، گھر میں ہی تھے، تو آگے جیسے گئے تو دیکھا بابا کے ہونٹ ہل رہے ہیں، بابا کا مکھ چل رہا ہے، ہونٹ ہل رہے، ایک آواز آ رہی ہے۔ اور جیسے بابا نے وہ سنا تو ان کو انوبھو ہوا، یہ پریوار والوں نے سنا تو وہ کیا شبد نکل رہے تھے، شیو پرماتما ان کے تن میں پرویشت ہو گئے، پرویش ہو کر کے اپنی پہچان ان کے مکھ سے دے رہے تھے۔ اور کیا پہچان دے رہے تھے، نجانند روپم شیوہم شیوہم، میں نج آنند روپ ہوں، میں شیو ہوں، میں گیان سوروپ ہوں، میں شیو ہوں، میں پرکاش سوروپ ہوں، میں شیو ہوں، میں شکتی سوروپ ہوں، میں شیو ہوں۔ شیو پرماتما ان کے مکھ سے اپنا پریچے دے رہے تھے۔ और परिवार वाले देखते रह गए। ये आवाज आकाशवाणी की तरह उनके मुख से निकल रही है। और फिर थोड़ी देर के बाद बाबा ने आंखें खोली, और आंखें भी जब खोली तो आंखें भी एकदम चमक रही थी, जैसे बल्ब चमक रहे हैं। ये बाबा का अनुभव किया उनके चेहरे से। तो जब एकदम शांत हुए तो बाबा से पूछा, बाबा आपने क्या अनुभव किया? बहुत ही सुंदर सुखद चेहरा था आपका, इतना जैसे खोए हुए थे, इतना प्रकाश था चारों ओर, आपने अनुभव क्या किया? तो बाबा ने बहुत धीरे से कहा, कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी, कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी, वो मेरे अंदर प्रवेश हो गई। ये बाबा ने कहा, बस और कुछ नहीं। उनको और कुछ समझ में नहीं आया, इतना ही कि वो प्रकाश और शक्ति उनके अंदर प्रवेश हो गई। अब प्रवेश होकर के क्या करेगी वो शक्ति, वो उनको भी पता नहीं था, बस और एकदम उसी में खो गए। और फिर तो क्या हुआ, चमत्कार होने लगे। क्या चमत्कार होने लगे? सबसे पहला चमत्कार ये हुआ कि बाबा खड़े होते थे धोती कुर्ता पहन करके, धोती कुर्ता पड़ा हुआ था, लेकिन वो बाबा नहीं दिखाई देता था। जो भी उनके सामने आते थे उनको श्री कृष्ण दिखाई देता था। श्री कृष्ण बांसुरी बजाता हुआ, मोर मुकुटधारी पीताम्बरधारी खड़े हैं उनके सामने। तो बस इतनी ये बात ऐसे फैल गई अग्नि की तरफ कि एक दादा लेखराज है, उनके पास एक जादू है, उनके सामने जो भी आता है उसको श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं उनसे। और दूसरी बात ये थी कि बाबा ओम की ध्वनि करते थे, ओ बहुत लंबा ओम की ध्वनि करते थे। और जैसे ही ओम की ध्वनि करते थे तो कई सभा में वो ध्यान में चले जाते थे और श्री कृष्ण को ध्यान में देखते थे, ट्रांस में श्री कृष्ण को देखने लगते थे, और वो रास कर रहे हैं श्री कृष्ण के साथ। या तो बाबा से देखते थे, या तो ध्यान में जाकर के खुद ही व खुद खड़े होकर के ट्रांस में और रास कर रहे हैं, जैसे उनको श्री कृष्ण के साथ वो गोपियां बन करके रास कर रही हैं, ऐसे उन्होंने अनुभव किया। और तीसरी बात ये थी कि केवल जो सामने आते थे उनको ही नहीं होता था साक्षात्कार, लोगों को घर बैठे भी होता था। और घर बैठे क्या अनुभव करते थे, श्री कृष्ण उनके सामने खड़ा है और वो उनके सामने जा रहे हैं तो श्री कृष्ण पीछे हट जाता है और बाबा खड़े हैं आगे। वो अनुभव करते थे अपने घर में भी। और क्या अनुभव करते थे, श्री कृष्ण उनको पीछे से कहता है, मैं ऐसे नहीं मिलूंगा, इनके पास जाओ, इनके पास जाओ तो इनके पास मैं मिलूंगा आपको। ये ऐसे इशारे से कृष्ण श्री कृष्ण उनको कह रहा है। और ये कहाँ मिलेंगे, कईयों को तो पता नहीं होता था, तो ढूंढ ढूंढ करके कैसे बाबा के पास पहुंच जाते थे। लेकिन ये इतनी बड़ी न्यूज बन गई जो सारी दुनिया में 1936 में, आज से 82 वर्ष पूर्व, ये फैल गई कि एक दादा लेखराज है हिंदुस्तान में, भारत में, तब तो एक ही भारत था, 1936 की ये बात है। और यहाँ तक कि टाइम मैगजीन, एक अमेरिका में इंटरनेशनल मैगजीन छपती है, उस मैगजीन में भी इसका उल्लेख आया, एक आर्टिकल आया कि भारत में एक दादा लेखराज है जिनके पास चमत्कारिक शक्ति है, जो भी उनके सामने जाता है उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं। और इसके आधार पर कितने लोग आते थे, लेकिन बाबा कहते थे ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा, मुझे तो पता भी नहीं है, मैं खुद भी हैरान हूं कि ये सब क्या हो रहा है। बाबा तो गीता का पुस्तक उठाते थे और गीता का पाठ करते थे, लेकिन पुस्तक हाथ में रह जाती थी और शिव परमात्मा की प्रवेशता हो जाती थी और उनके मुख से ज्ञान निकलता था, वो मुख से ज्ञान निकलता था, किताब वहीं की वहीं, और ये ज्ञान निकलता था जो बाबा खुद भी सुनते थे। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं खुद अपना सुन रही हूँ, लेकिन कोई और बोल रहा है और मैं सुन रही हूँ, ये बाबा अनुभव करते थे। تو بابا کو لگتا تھا یہ میں نے تو کہا نہیں، مجھے تو پتا بھی نہیں یہ باتیں. پرماتما نے اپنی پہچان دی، آتما کی پہچان دی، کرموں کی پہچان دی، اپنے دھام کی پہچان دی، سمے کی پہچان دی، سنسار چکر کی پہچان دی. یہ ساری جو باتیں ہم لوگ یہاں سنتے ہیں سناتے ہیں، یہ شیو پرماتما نے ان کے مکھ سے کہی. اور بہت آتمائیں آتی گئی آتی گئی، یہ گیان سنتی گئی. لیکن ایک چمتکار یہ بھی ہوا کہ مہیلاؤں کو زیادہ ہوتا تھا، ناریوں کو، بہنوں کو، پرشوں کو کم ہوتا تھا، استریوں کو ہوتا تھا. وہ زیادہ دھیان میں جاتی تھی اور وہ زیادہ آتی تھی ستسنگوں میں. اور ان میں سے کون کون آئے، تو ایک سب سے پہلے اوم رادھے، جن کا نام رادھے تھا، آپ 16-17 سال کی تھی اور اسکول میں پڑھتی تھی. ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کے پتا جی بھی ہیرے جواہرات کا ویاپار کرتے تھے، بابا کی طرح ہی تھے، لیکن ان کو بہت گھاٹا پڑا، بزنس میں تو گھاٹا پڑا، اتنا دیوالہ نکالا جو ایک دم سے صدمہ ہوا اور ہارٹ فیل ہو گئے، ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ امرتسر میں رہتے تھے لیکن ان کا گھر حیدرآباد سندھ میں تھا، تو بزنس کے خاطر امرتسر میں رہتے تھے. تو پھر ان ماں اور بیٹی دونوں واپس آ گئے حیدرآباد سندھ، اور وہاں پر وہ ان کی جو ماں تھی بہت روتی تھی. یہ تو ان کا ایک سال مس ہو گیا، تو پھر سے اسکول میں داخل ہوئی، پر بہت ہوشیار تھی، گیت سنگیت نرتیہ کلا سب کلاؤں میں ہوشیار تھی، اوارڈز لیتی تھی. اور پر ان کی ماں کی جو حالت تھی وہ تو بہت دکھی تھی، کیونکہ پتی گزر گیا، ان کا بیٹا تھا وہ بھی گزر گیا، تو بس ماں بیٹی ہی رہ گئی، اور سارا دھن سمپتی بھی سب جیسے ختم ہو گئی. تو بہت روتی تھی، لیکن یہ بڑی ہوشیار تھی لڑکی اور سندر بھی تھی. لیکن کس نے ان کو کہا کہ آپ اپنی ماں کو بابا کے پاس لے جاؤ، وہاں ان کو کرشن کے درشن ہوں گے تو شانتی ملے گی. تو یہ اپنی ماں کو لے کر گئی، اور جیسے ماں کے ساتھ آئی تو ماں کو کرشن کا ساکشاتکار ہو گیا. لیکن ان کو کچھ نہیں ہوا، یہ تو 16-17 سال کی تھی. لیکن ان کے پتا کو بابا جانتے تھے، کیونکہ بزنس مین میں بزنس مین ایک دو کو جانتے ہیں، اور یہ بھی پتا چلا کہ کیسے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور یہ بس ابھی ماں بیٹی ہی ہے. اور ان کی آواز بہت سریلی تھی، تو بابا ان دنوں میں بھجن لکھتے تھے اور کئیوں سے گواتے تھے، کئی بھجن مل کر کے بھجن گاتے تھے. تو بابا نے ان کو کہا کہ آپ پہلے اوم کی دھونی کرو. تو اس نے اوم کی دھونی کی، اور جیسے اوم کی دھونی کی، جو بھی سبھا بیٹھی ہوئی تھی سب کو ان سے رادھے کا ساکشاتکار ہوا. بابا سے کرشن کا ساکشاتکار ہوتا تھا اور ان سے رادھے کا ساکشاتکار سب کو ہوا، تو ان کا نام پڑا اوم رادھے. تو اوم رادھے ان کا نام پڑ گیا، کیونکہ اوم کے اچارن سے رادھے کا، اور ان کا نام بھی رادھے ہی تھا، رادھی کا نام تھا. تو ان سے یہ ساکشاتکار ہوا، اور پھر یہ بھجن بھی گاتی تھی. تو مانو وہ اس سمے جو سنگٹھن تیار ہوا اس کا نام پڑا اوم منڈلی، اوم کی منڈلی. اور تو یہ دوسرا جو ایک چمتکار کہو یا کہیں گے کرانتی ہوئی، پہلی کرانتی تھی ساکشاتکاروں کی، اور دوسری کرانتی تھی کہ بہنوں نے آ کر کے اپنا جیون بابا کے آگے سمرپت کر دیا، اپنا جیون ہی سمرپت کر دیا. تو ایک مثال یہ تھی، اور دوسرا مثال دادی پرکاش منی جی، جو اس ایشوری وشو ودیالے کی مکھیہ پرشاسکا تھی 38 ورش پتا شری برہما بابا کے دیہاوسان کے بعد. آپ اس سمے 14-15 سال کی تھی، اور آپ کو گھر بیٹھے ساکشاتکار ہوا تھا. ان کے پتا جی جوتشی تھے، وہ جنم پتری بناتے تھے. تو ان کی جنم پتری جب بنائی تھی تو ان کے پتا کو پتا تھا میری بیٹی کرشن کی ہو جائے گی، ان اپنا جیون بھگوان کو ارپت کرے گی، یہ وہ مانتی تھی، مانتا تھا. تو ان کے پرتی بہت بھاونا تھی، कि मेरी बेटी अपना जीवन मीराबाई की तरह बनाएगी और कृष्ण को अपना जीवन समर्पित करेगी। तो इनको घर बैठे साक्षात्कार हुआ श्री कृष्ण का और बाबा का, और कृष्ण कह रहा है मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ। फिर ये न्यूज तो फैल चुकी थी चारों तरफ, तो इनके पिता ने ही इनको कहा कि बेटी यहाँ एक दादा लेखराज है, उनके पास कुछ ऐसी शक्ति है, आप जाकर देखो क्या होता है वहाँ। जैसे बाप अपने बेटी को कहता है जाके देखो, कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी, मंदिर बनाया था उनके पिता ने, तो मंदिर में रोज कृष्ण को उठाती थी, जगाती थी, फिर सुलाती थी, मानो बहुत कुछ कृष्ण की भक्ति में लीन होती थी। तो जब ये बाबा के पास गई तो बाबा को देखते ही इनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा जो उसने घर बैठे देखा था। लेकिन इनको देखा, ब्रह्मा बाबा को देखा और कृष्ण की दुनिया में जैसे रास करने लग गए। और ये जब इनको अनुभव हुआ उसके बाद जब वापस आई ध्यान से, तो बाबा ने इनको पहचान लिया। इनके पिता को बाबा जानते थे और ये भी जानते थे कि इनके पिता ने कहा है कि मेरी बेटी तो अपना जीवन कृष्ण को अर्पित करेगी। तो उस समय बाबा एक स्कूल चला रहे थे, बाबा के अंदर बाबा ने एक स्कूल बनवाया था जिसमें छोटी छोटी कुमारियां, छोटी छोटी बच्चियां, उनके लिए स्कूल था, लड़के नहीं, केवल लड़कियों के लिए, क्योंकि बाबा को वैसे भी बहनों के प्रति, माताओं के प्रति बहुत ही रिस्पेक्ट था, नारी शक्ति के प्रति बहुत आदर था। तो वो स्कूल बाबा ने बनवाया था और बाबा को टीचर्स की जरूरत थी। तो बाबा ने दादी प्रकाशमणि, उनका नाम रमा था, तो उनसे बाबा ने पूछा कि आप ऐसे टीचर बन करके सेवा करोगी, पर उसके लिए अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित करना पड़ेगा। तो उसने कहा मैं पिता से पूछूं, पिता ने कहा आपका तो जीवन है ही श्री कृष्ण को अर्पित। तो फिर अगले दिन से वो स्कूल नहीं गई और राधे भी स्कूल नहीं गई, बस बाबा के पास आए और बाबा के पास समर्पित होते गए, समर्पित होते गए। और उसके बाद एक छोटा सा सुंदर परिवार बन गया, अलौकिक परिवार, जिसमें बाबा के अपने लौकिक बच्चे भी थे और साथ साथ ये परिवार भी, भाई बहने भी जुड़ते गए और एक अलौकिक परिवार बाबा का बन गया हैदराबाद सिंध में। वो आते थे और सत्संग करते थे, ध्यान में जाते थे। फिर एक तीसरी क्रांतिकारी बात हुई, और वो क्रांतिकारी बात क्या हुई कि शिव परमात्मा ने इन सब को आदेश दिया कि अभी अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है, पवित्र और योगी बनाना है, बस ये आदेश दिया। और सब ने प्रतिज्ञा की कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। अब ये जो प्रतिज्ञा हुई ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज बन गई कि ऐसे छोटी छोटी बहनों ने इस प्रकार प्रतिज्ञा की है कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। तो फिर बाबा का विरोध होना शुरू हो गया, विरोध होने लगा कि ये छोटी छोटी बच्चियों को पता ही नहीं है कि ये पवित्र योगी होता क्या है। और बाबा कहते थे ये मैंने नहीं किया, ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे खुद भी पता नहीं है क्या हो रहा है, और मुझे भी भगवान का ये आदेश मिला, मैं भी तो अपने परिवार में ही हूँ। परिवार उनका साथ था, पत्नी थे, बच्चे थे, सब साथ में ही थे, तो पूरा जैसे एक ही परिवार हो गया, लौकिक और अलौकिक परिवार। और जो मुझे भगवान का आदेश मिला मैं भी उसका पालन कर रहा हूँ, ये मेरी शक्ति नहीं है। अब ईश्वर की शक्ति को कौन पहचाने, वो तो उन्हों को तो कुछ समझ में नहीं आया, तो काफी विरोध किया। लेकिन एक और ये परिवार बढ़ता गया तो हैदराबाद सिंध में उनका जो मकान था वो भी छोटा पड़ गया। तो फिर बाबा हैदराबाद सिंध से कराची चले गए, कराची बड़ा शहर है, हैदराबाद जैसे पूना और कराची जैसे मुंबई, तो बहुत बड़ा शहर है कराची, तो सागर के किनारे पर है। तो करीब 385 भाई बहने ये सब कराची में रहे और 14 साल तक कराची में तपस्या की। वो 14 साल में जो उन्होंने तपस्या की वो आज हमारी जो दादियां हैं, जो आप देख रहे हो दादी जानकी जो इस समय 103 साल की है, वो उसी समय 20 21 साल की थी, तो आज वो 103 साल की। आप मिले उनसे, दादी से मिले? दादी मिले थे आपसे, आए थे यहाँ मिलने के लिए? हाँ, तो उनमें से आप एक हैं। तो कैसे उस समय वो इतनी छोटी बहनें थी, कोई 12 साल, कोई 15 साल, कोई 18 साल, कोई 20 साल, और उन सब ने 14 सालों तक तपस्या की। और वो दादियां, दादी माना बड़ी बहन, सिंधी भाषा में बड़ी बहन को दादी कहते हैं, जैसे हिंदी में बड़ी बहन को दीदी कहते हैं, तो सिंधी भाषा में बड़ी बहन को दादी कहते हैं। जो हमारी दादियां हैं, बड़ी बहनें, वरिष्ठ बहनें हैं, तो उस समय उन्होंने 14 साल तपस्या की। वो उस समय के ये बहनें तो कराची में आप बिल्कुल दुनिया की निगाहों से दूर रही 14 साल, 1937 से लेके 1950 तक। और ये 14 साल कैसे सागर के किनारे जाते थे, वहाँ ड्रेस शर्ट और ये शॉर्ट्स पहन करके एक्सरसाइज भी करते थे, तपस्या भी करते थे। क्लिफ्टन बीच है वहाँ, जैसे मुंबई में जुहू बीच है या चौपाटी बीच है, वैसे ही वहाँ क्लिफ्टन बीच है कराची में। तो वहाँ जाकर के सागर के सामने बैठ करके तपस्या करते थे। और परमात्मा जो शांति का, ज्ञान का सागर है, उस सागर का अनुभव करते थे। और फिर 1950 तक आप जानते हैं कि कैसे इस 1937 से लेकर के 1950 तक इन्होंने तपस्या की बिल्कुल दुनिया से दूर। पर इन्हीं वर्षों में दुनिया का नक्शा बदल गया, क्योंकि 1939 to 45 छह साल तक, 39 से 45 तक दुनिया में विश्व युद्ध छिड़ा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1939 से 1945 तक ये विश्व युद्ध चला, जिसमें लाखों लोग मारे गए, बहुत करोड़ों गए तो भी गलत नहीं होगा, इतने लोग मारे गए दूसरे विश्व युद्ध में। और वो विश्व युद्ध तब समाप्त हुआ जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब गिराए, एटम बॉम्ब गिराए। तो जब ये एटम बॉम्ब गिरे और पूरे के पूरे शहर खत्म हो गए जापान के, तब बाबा से पूछा गया, शिव परमात्मा से, कि बाबा क्या यही विनाश है? बाबा ने कहा, ये विनाश नहीं, तो रिहर्सल है, ये तो रिहर्सल है। आप सोचो, रिहर्सल ही इतना भयावह था, तो सही जो रूप में विनाश होगा वो कैसा होगा? तो रिहर्सल है। और उसी समय बहुत जबरदस्त सुनामी आया था, भूकंप आए थे, बहुत चारों ओर बहुत कुछ तबाही हुई थी। तो बाबा से फिर पूछा गया, बाबा ये इतना सारा प्राकृतिक आपदाएं आई है, बाबा ये क्या है? बाबा कहते, ये रिहर्सल है, ये रिहर्सल है, फाइनल से पहले रिहर्सल होता है। फिर उसी समय आप जानते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और 1947 में अंग्रेज चले गए, लेकिन भारत के दो टुकड़े करके गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके गए, और ये कराची यानी सिंध वो पाकिस्तान में चला गया। और ये सब वहीं तपस्या कर रहे थे कराची में। तो परमात्मा से फिर इन्होंने पूछा, बाबा ये क्या? क्योंकि इतनी रक्त की नदियां बही, पूरा सिविल वॉर जैसा हो गया था उस समय जब बंटवारा हुआ, कितने लोग मारे गए, कितना खून खराबा हुआ। तो बाबा से फिर पूछा गया, बाबा ये तो पूरा सिविल वॉर जैसा है, क्या यही विनाश है? बाबा ने कहा, नहीं, ये रिहर्सल है। तो जो बाबा ने दृश्य देखा था, अणु युद्ध, ग्रह युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, ये तीनों ही एक मिनिएचर फॉर्म में उन्हीं दिनों में हुए थे। और यही अनुभव हुआ कि इसका अंतिम स्वरूप क्या होगा। लेकिन 1950 में जब भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी को, उसके बाद कुछ समझौते हुए, शांति हो गई, तो परमात्मा का आदेश मिला कि अभी भारत जाओ, भारत जाओ, भारत दुनिया का लाइट हाउस बनेगा, भारत विश्व को शांति का मार्ग बताएगा, और भारत ही फिर से स्वर्ग भूमि बनेगा।
भारत में ही दूध घी की नदियां बहेगी, भारत में ही कृष्ण का राज्य आएगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा, ये सब परमात्मा का उनको आदेश मिला। तो 1947 में जब वहां से हिंदू निकले थे तो कई हाथ खाली निकले थे, सब सामान वमान सब छोड़ के आए थे क्योंकि जान को खतरा था। लेकिन 1950 में जब फिर से सुलह हो गई, सब कुछ हो गया, तो इस संस्था, ये संस्था तो वहीं थी कराची में, तो वहां के जो सिंध के चीफ मिनिस्टर थे वो बाबा के एक मित्र थे, तो बाबा ने उनको कहा क्योंकि शिव परमात्मा का आदेश मिला अभी भारत जाना है, और भारत में भी कहाँ जाना है, एक पहाड़ पर जाना है, कराची तो सागर का किनारा है तो पहाड़ पर जाना है, तो ये माउंट आबू जो पहाड़ है ये बाबा ने चुना जो कराची के बहुत नजदीक है, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न बॉर्डर पर है, पश्चिमी बॉर्डर पर है, पाकिस्तान यहाँ से बहुत दूर नहीं है। तो कैसे वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर ने बहुत सहयोग दिया और कहा कि आप सब कुछ ले जा सकते हैं, तो एक जहाज भी दिया, जहाज भी दिया उन्होंने, कहा कि अपना सारा सामान, 385 भाई बहने थे, सब सामान लेके जा सकते, तो कुछ भी नहीं छोड़ा, एक सुई भी नहीं छोड़ी वहाँ, सब कुछ लेकर के आए और जहाज में आए। गुजरात में सौराष्ट्र में ओखा बंदरगाह है, वहां पर उतरे, तो ये जहाज में बैठे हैं सब और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ रहे हैं वापस अपने देश। और कैसे यहाँ वहाँ ओखा बंदरगाह है सौराष्ट्र में जामनगर के पास, तो वहां से उनको ट्रेन मिली जो पोरबंदर से आती है कुछ वो ट्रेन, तो वहां से ये आबू रोड आए, तो 14 साल के बाद दुनिया देखी इन्होंने, आप देख सकते हैं 1950 की ट्रेन है ये, तो कैसे उस समय रेलिंग वेलिंग कुछ नहीं होते थे, पूरा झांक सकते थे बाहर, तो ये उस समय वहां आबू रोड पर पहुंचे और आबू रोड से उस समय कहीं पहाड़ भी कुछ टूटा हुआ था तो रास्ते में उनको पैदल भी करना पड़ा, लेकिन भगवान ने उनको आदेश दिया पहाड़ पर जाना है, तो माउंट आबू में आए और माउंट आबू में बाबा ने बहुत तपस्या की। पहाड़ आप देखेंगे माउंट आबू में गुफाएं बहुत है, बहुत गुफाएं हैं और कई ऐसे स्थान है जहां एकांत में जाकर के बैठ सकते हैं, तो बाबा ने तपस्या की और उस मम्मा ने भी साथ में तपस्या की यहाँ माउंट आबू में, जहाँ आप लोगों ने टोल टैक्स भरा होगा माउंट आबू आने के लिए, वहाँ ही एक बहुत बड़ा महल है जिसको भरतपुर राजा की कोठी कहते हैं, भरतपुर राजा का महल, क्योंकि ये माउंट आबू जो स्थान है ये राजाओं का स्थान है। माउंट आबू में राजा महाराजा लोग गर्मी के दिनों में आकर के रहते थे, खास ये राजस्थान और गुजरात सौराष्ट्र ये सब एक था, तो वहाँ के राजा महाराजा अप्रैल मई जून ये तीन महीना माउंट आबू में रहते थे, उनका पूरा समर कैपिटल माउंट आबू होता था, वहाँ बड़े बड़े महल बने हुए हैं माउंट आबू में। अभी तो वो 1950 के बाद तो सब गणतंत्र हो गया तो राजाई खत्म हो गई, लेकिन अभी वो स्कूल है या हॉस्टल्स है या होटल्स है माउंट आबू में, बड़े बड़े महल है वहाँ के। तो कैसे जंगल भी चारों ओर है, बहुत बड़ा जंगल है, आप देखेंगे कल जाएंगे माउंट आबू देखेंगे, हरियाली भी खूब है, इस समय बारिश होने के कारण बहुत अच्छी हरियाली भी है, इतनी रश है, अभी मैं माउंट आबू से नीचे आई हूँ, नहीं तो 45 मिनट में हम पहुंच सकते हैं माउंट आबू से नीचे, और मुझे 1.5 घंटा लगा, इतने लोग जा रहे हैं माउंट आबू, बात मत पूछो, छुट्टियां हैं, तो ये हिल स्टेशन गुजरात राजस्थान का यही है, तो यहाँ पूरी आते समय भी लाइन और जाते समय भी लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की बसों की, इतना टाइम लगा हमको आने में। तो आप भी जाएंगे तो देखेंगे वहाँ कैसी भीड़ है माउंट आबू में, और सारे होटल्स बुक हो जाते हैं, 2 दिन के लिए भी जगह नहीं मिलती है रहने को, ऐसा भी होता है। लेकिन तपस्या के स्थान भी बहुत है, तो बाबा और मम्मा और उनके जो भाई और जो सब भाई बहने कैसे वहाँ तपस्या करते थे। फिर 1952 में हमारी एक दादी है, वो भी 12-13 साल की थी जब शुरू शुरू में आई, इनके लौकिक जो घर वाले थे वो दिल्ली में रहते थे, तो उन्होंने इनको निमंत्रण दिया कि आप आकर के आपने जो कुछ सुना है, 14 साल अनुभव किया है, वो हमको आकर के सुनाओ, हम भी वो अनुभव करना चाहते हैं। तो बाबा ने इनको छुट्टी दी और कहा कि जाओ दिल्ली जाओ और अपने परिवार वालों को ये ज्ञान दो, उनको अपना अनुभव सुनाओ। तो ये जैसे ये दिल्ली गई, ये बहन इसलिए फोटो रखा है, ये दिल्ली जैसे गई तो ये भी बहुत अच्छा ओम की ध्वनि करती थी, और जैसे उसने ओम की ध्वनि की, इनके परिवार वालों को इनसे देवी का साक्षात्कार होने लगा, दुर्गा, दुर्गा अम्बा, जैसे शेर पर सवार, ऐसे उन्होंने अनुभव किया। तो ये भी एक समाचार उस समय फैल गया कि पहाड़ से देवी आई है जिससे देवी का साक्षात्कार होता है। तो मंदिरों ने इनको निमंत्रण दिया, मंदिरों में जाकर के भाषण करती थी, जमुना के किनारे दिल्ली में भाषण करती थी, बहुत लोग इकट्ठे हो जाते थे। और फिर एक महीना वहाँ सेवा की घर में रहकर, लेकिन उसके बाद उसने कहा इतने सारे लोग, हम कहाँ, कोई स्थान चाहिए जहाँ परमानेंट सत्संग कर सके, ज्ञान दे सके। तो बाबा से इन्होंने पूछा, तो बाबा ने कहा उनको कोई एक मकान लेकर के दे। तो उन्होंने मकान लेकर के दिया और हमारा पहला सेवा केंद्र आबू के बाहर दिल्ली में खुला 1952 में। तो दिल्ली, हम कहते हैं दिल्ली दिलवाला की दरबार है, दिल्ली दिल है, भगवान की दिल, वैसे भारत की राजधानी है। तो वहाँ पर पहला केंद्र खुला और धीरे धीरे अन्य स्थानों पर भी हमारे केंद्र खुलते गए, और देखते देखते वहाँ के भाई बहने भी माउंट आबू आते गए, परिवार के परिवार आते थे, फिर मम्मा भी जाती रहती थी। मम्मा से सबको सरस्वती का साक्षात्कार होने लगा, राधे का साक्षात्कार, लक्ष्मी का साक्षात्कार, मानो साक्षात्कारों के जरिए कैसे आत्माएं आकर्षित होकर के आती थी। और ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती, ये शिव बाबा ने इनको टाइटल दिया। तो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, अलौकिक बेटी सरस्वती, कैसे उन्होंने भी चारों ओर सेवा की, और मम्मा जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ उनका बहुत सम्मान होता था। पर उतनी ही मम्मा तपस्विनी थी, बहुत तपस्या करती थी, दादी प्रकाशमणि सदा उनके साथ रहते थे और वो भी उतने ही तपस्विनी थे। तो मम्मा की तपस्या भी सचमुच, जैसे मम्मा के सामने हम लोग जाते थे, हम अनुभव करते थे हम अशरीरी हो रहे, देह से न्यारी स्थिति उनकी थी, तो वो अनुभव हम भी करते थे, विदेह अवस्था, देह से न्यारी अवस्था, बॉडीलेस स्टेज हम अनुभव करते थे उनके सानिध्य में आकर के। तो कैसे 1965 को मम्मा ने अपना देह त्याग किया, 46 वर्ष की उम्र में, यंग थी, 46 वर्ष की उम्र में अपना देह त्याग किया, 24 जून 1965। और उसके बाद दीदी मनमोहिनी जो दिल्ली में रहती थी, उनको बाबा ने माउंट आबू बुलाया। दीदी मनमोहिनी भी शुरू शुरू से ही थी, इनका परिवार बहुत धनी परिवार था, इनके जो भी परिवार वाले हिंदुस्तान में आए, भारत में आए, उन्होंने मुंबई में कॉलेजेस खोले और हॉस्पिटल्स खोले, मुंबई का बहुत प्रसिद्ध हॉस्पिटल है जसलोक हॉस्पिटल। तो इनके वो चाचा चाची थे जसलोक, जसुमती लोकुमल, उन्होंने मुंबई में हॉस्पिटल्स खोले और किशनचंद चेलाराम कॉलेज, सब सिंधी लोग जो हैदराबाद सिंध से हिंदुस्तान में आए, उन्होंने कॉलेज और हॉस्पिटल हिंदुस्तान में, भारत में खोले, और ये उनके ही परिवार के थे। तो बाबा फिर बाहर जाने लगे और दीदी मनमोहिनी आबू में रहते थे। तो धीरे धीरे ये सब आप देख रहे हैं, परिवार के परिवार माउंट आबू आते थे और बाबा से मिलते थे, मम्मा से मिलते थे, ये सारे बाबा कैसे अलौकिक मात पिता के रूप में थे। बाबा ने यही कहा कि यहाँ कोई हदे नहीं है, कोई जाति धर्म भाषा प्रांत देश की कोई हद नहीं, क्योंकि सब आत्माएं एक पिता परमात्मा के बच्चे हैं, ये वसुधैव कुटुंबकम, हम सब आत्माएं हैं, और किसको याद करना है, एक शिव परमात्मा को याद करना है। उनके साथ ही हम आत्माओं का के सर्व संबंध है। बाबा पत्र भी बहुत लिखते थे, जो भी बाबा को पत्र लिखते थे बाबा उनको जवाब जरूर देते थे। और ये वहाँ पर माउंट आबू में जो पांडव भवन है जहाँ ब्रह्मा बाबा रहते थे, वहाँ ये बाबा की झोपड़ी है। तो बहुत सजाई हुई थी एक दिन, तो फोटो लिया गया है। ये बाबा की झोपड़ी है, बहुत सिंपल। बाबा के दिनों में तो ये खजूर के जो पत्ते होते ना, पेड़ के पत्ते खजूर के, उनसे बाबा बनवाते थे हर साल, ताकि वो अच्छी ठंडक होती थी। गर्मी के दिनों में बाबा बनवाते थे और दिन में बाबा बैठते थे। तो ये बाबा की झोपड़ी है जहाँ बाबा बैठ के तपस्या भी करते थे, साथ साथ पत्र भी लिखते थे। ये बाबा की झोपड़ी में कैसे यहाँ पर दरी बिछी, जहाँ पर बैठक है जहाँ बाबा बैठते थे, चारों ओर बगीचा है बाबा की झोपड़ी के। और फिर हिस्ट्री हॉल है जहाँ पर बाबा आकर के वाणी चलाते थे, जिनको हम मुरली कहते हैं। तो वो मुरली बाबा इसी हॉल में चलाते थे। आज भी वो हॉल में हम जाते हैं और वो स्थान देखते हैं तो वो याद आती है बातें, कैसे बाबा यहाँ बैठ करके मुरली चलाते थे, माना ज्ञान देते थे, क्लास कराते थे। और मुरली चलाना, मुरली कोई बजाने की नहीं होती है, लेकिन ज्ञान सुनाने की बात है। तो वो हिस्ट्री हॉल है जहाँ पर अभी जो वहाँ परमानेंट रेजिडेंट्स है उनके लिए क्लासेस होते हैं। और 18 जनवरी के दिन वहाँ बहुत तपस्या चलती है। और ये तीसरा बाबा का कमरा है जहाँ बाबा रहते थे, बहुत सिंपल, बस एक खटिया है और नीचे बिछा हुआ है जहाँ बाबा बैठ करके बच्चों से मिलते थे। तो यहाँ पर बाबा का कमरा है। और 18 जनवरी के दिन रात्रि 9:15 बजे लगभग पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने 93 वर्ष की उम्र में इसी स्थान पर अपने ही पलंग पर बाबा ने अपना देह त्याग किया और अव्यक्त स्थिति को प्राप्त हुए, फरिश्ता हुए, फरिश्ता बने। तो 18 जनवरी 1969 बाबा की उम्र उस समय 93 वर्ष की थी, लेकिन अंत तक बाबा ने कभी चश्मा नहीं लगाया, कभी बाबा ने हाथ में लकड़ी नहीं उठाई, उनकी कमर कभी नहीं झुकी। इतने अंत तक भी बाबा कितने एक्टिव थे, अलर्ट थे। और आश्रम के अंदर ही उनके पार्थिव देह का अंतिम संस्कार हुआ, जिसको हम शांति स्तंभ कहते हैं। तो ये ब्रह्मा बाबा की स्मृति में शांति स्तंभ बनाया गया है, जो बाबा की समाधि है। आप माउंट आबू जाएंगे, पांडव भवन देखेंगे, तो ये आप देखेंगे शांति स्तंभ, जहाँ 18 जनवरी के दिन हजारों भाई बहने आते हैं और अपने श्रद्धा सुमन पिताश्री ब्रह्मा बाबा को अर्पित करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की स्मृति में पांडव भवन जो माउंट आबू में है, जहाँ बाबा रहते थे, वहाँ 4 धाम हैं जहाँ सब भाई बहने जाकर के दर्शन करते हैं। एक शांति स्तंभ जो बाबा की समाधि है, दूसरा हिस्ट्री हॉल जहाँ बाबा वाणी चलाते थे, और तीसरा बाबा की झोपड़ी जहाँ बाबा व्यक्तिगत रूप से मिलते थे, एक सिटिंग रूम जैसा, और चौथा बाबा का कमरा जहाँ बाबा विश्राम करते थे। तो ये 4 स्थान जो भी जाते हैं वो जरूर दर्शन करते हैं। और बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी जी तो वहीं थे, माउंट आबू में ही थे, लेकिन दादी प्रकाशमणि उस समय मुंबई में रहते थे। तो बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी, माना दोनों का अर्थ बड़ी बहन ही है, तो दीदी और दादी ने जॉइंटली मिल करके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को का प्रशासन किया। और ये 2 हंसों का जोड़ा थे, 2 शरीर भले थे लेकिन एक आत्मा थी। यानी इतना उनका सुंदर समन्वय था, जो दीदी कहे वही दादी कहे, और दीदी दादी मानो हमारे लिए आदर्श थे। शिव बाबा ने इनको आगे रखा कि अब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आपको आगे बढ़ाना है। तो शिव परमात्मा के आदेश अनुसार कैसे इन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया, और दिन दुगनी रात चौगनी गति से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रगति होती गई, प्रगति होती गई। तो 69 में इन्होंने कैसे कार्यभार संभाला और उसके बाद विदेशों में हमारी सेवाएं शुरू हो गई और विदेश से भाई बहने माउंट आबू आने लगे। और दीदी मनमोहिनी ने 1983 में अपना देह त्याग किया और उसके बाद अन्य और दादियां थी जिन्होंने सारा कार्य संभाला। दादी प्रकाशमणि जी ने 69 से लेके 2007 38 वर्षों तक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाया। तो 2000 तक तो दादी पांडव भवन में रहते थे माउंट आबू में और 2000 के बाद यहाँ पर आप आए और यहाँ ही रहने लगे और 2007 में आपने शरीर त्याग किया। लेकिन दादी और दीदी ने कैसे मिलके ये आगे बढ़ाया। पांडव भवन के सामने यूनिवर्सल पीस हॉल है जहाँ 3000 भाई बहने एक पहाड़ पर इतना बड़ा हॉल बनाया है, वहाँ पर हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती है, एक संत सम्मेलन भी हुआ था जहाँ चारों ओर से बड़े बड़े महामंडलेश्वर भी आए थे और मिल करके कैसे विश्व शांति सम्मेलन किया था। 1991 में पांडव भवन के पास 4 किलोमीटर दूर माउंट आबू में ही एक जमीन मिली जहाँ एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड बनाया जिसका नाम रखा है ज्ञान सरोवर, जहाँ पर भिन्न भिन्न वर्गों के लोग आकर के उस एकेडमी में प्रोफेशनल रूप से वैल्यूज के ऊपर उनका प्रशिक्षण होता है और वहाँ पर जाते हैं। आप भी जाएंगे तो देखेंगे। और अपना एक ग्लोबल हॉस्पिटल है माउंट आबू में, उस ग्लोबल हॉस्पिटल में कैसे काफी सारा एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है जहाँ पर विदेशों से भी चैरिटी आती है, बहुत कुछ दान मिलता है और गांव-गांव में जाकर के ये हॉस्पिटल सेवाएं देता है, फ्री सेवाएं करता है गांव-गांव में माउंट आबू के और आसपास आबू के भी। और ये जो आप हॉल देख रहे हैं जिसमें आप सभी बैठे हैं, ये 1996 में बना जब इस संस्था की डायमंड जुबली थी, 60 साल हुए थे 1996 में, तो इसका नाम रखा है डायमंड जुबली हॉल। तो 60 साल इसलिए यहाँ पर इस हॉल में 20,000 लोग बैठ सकते हैं, जिस हॉल में आप बैठे हैं 20,000 लोग। और इस हॉल की विशेषता है कि यहाँ कोई पिलर्स नहीं है, खंबे नहीं है, नहीं तो छोटे छोटे हॉलों में भी कितने खंबे होते हैं, पर इतना बड़ा हॉल और बिना खंबों का इतना सुंदर हॉल बना है। लेकिन ये सब परमात्मा की शक्ति से कैसे बना, दादी प्रकाशमणि जी के सानिध्य में ये बना, जिन्होंने बताया 85 साल की उम्र में अपना देह त्याग किया और इसी हॉल के आगे दादी जी की स्मृति में प्रकाश स्तंभ बनाया हुआ है जो दादी प्रकाशमणि जी की समाधि है। आप जरूर देखा होगा आपने, यहाँ पर जाकर के शांति का अनुभव करते हैं। 25 अगस्त अभी कुछ दिन पहले ही, एक हफ्ता पहले ही ये हम लोगों ने उनकी एनिवर्सरी मनाई थी, वर्षी मनाई थी, हजारों भाई बहने उसी समय आए हुए थे। और अभी जो वर्तमान में हमारी मुख्य प्रशासिका है दादी जानकी जी, जो 103 साल की है, आज कल दादी जानकी जी हैदराबाद गए हैं, हैदराबाद में आज हैदराबाद में बहुत बड़ा वहाँ अकेडमी है, ये रिट्रीट सेंटर है, वहाँ इनर स्पेस बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया है, उसका उद्घाटन करने गई है दादी, हैदराबाद गए 103 साल की उम्र में। और कल दादी मद्रास जाएंगे, चेन्नई जाएंगे, वहाँ भी एक बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर बनाया है, उसका भी उद्घाटन कर रहे हैं। तो और उसके बाद 7 तारीख को वापस आएंगे। तो अभी भी दादी ट्रैवल करते रहते हैं, कुछ दिन पहले लंदन से होकर के आए हैं। ये परमात्मा की शक्ति है आपको जो मिल रही है और इतना बड़ा आप संस्था को चलाते हैं, हजारों भाई बहनों को आप संबोधन करते हैं। यहाँ आपने देखा होगा दादी प्रकाशमणि ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ हमारे जैसी बहनों की ट्रेनिंग होती है, तो भी वो कितने हजारों की तादाद में आते हैं, और ट्रेनिंग लेते हैं और लाख लाख की भीड़ में भी दादी जानकी ने भाषण किए हैं। एक लाख की भी सभाएं होती है, स्टेडियम लेना होता है, जिस स्टेडियम में हम लोगों के प्रोग्राम होते हैं, दादी जानकी के साथ जो सह मुख्य प्रशासिका है वो दादी हृदय मोहिनी जी है। बस समाप्त कर रहे हैं अभी एक मिनट में। और दादी हृदय मोहिनी जी भी इस समय वो 90 साल से अधिक है, वो भी 9 साल की उम्र में ज्ञान में आई थी 1936 में, और आज हम उनको देखते हैं कैसे शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा उनके तन में प्रविष्ट होकर के अव्यक्त वाणी चलाते हैं। इसी हॉल में वो कार्यक्रम होता है अक्टूबर से लेके मार्च महीने तक, और वो हमारे जो चैनल है पीस ऑफ माइंड चैनल उसमें हम दिखाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने देखा है वो हाथ उठाएं। काफी लोगों ने देखा है, तो ये प्रोग्राम्स हमारे आते रहते हैं पीस ऑफ माइंड चैनल में। यहाँ के स्टेज के भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स हम लोग दिखाते हैं, और यह 140 देशों में इस विश्वविद्यालय का कार्य चल रहा है। हमारे जैसी हजारों बहनें समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है, आप जैसे लाखों परिवार इसमें आकर के ज्ञान योग की शिक्षा लेकर अपने जीवन को श्रेष्ठ और ऊंच बना रहे हैं। तो इतना सारा आपने देखा, अब आप कहेंगे कि हमने पाया तो बहुत, लेकिन हम आगे क्या करें? तो हम यही कहते हैं कि यहाँ 5 खोटे पैसे देके जाओ और 1 आना लेकर जाओ। हाँ, जाते ना कोई तीर्थ स्थान पर दान करते हैं तो भगवान भी आपसे दान मांग रहे हैं। कौन सा दान आप करोगे? 5 खोटे पैसों का दान भगवान मांग रहे हैं। कौन से 5 खोटे पैसे? कौन से खोटे पैसे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 खोटे पैसे भगवान को दान में दे दो, और साथ में एक संकल्प लेके जाओ, प्रतिज्ञा करो कि 1 आना, 1 आना माना 1 बार रोज सेवा केंद्र पर जाना, ये आपसे हम संकल्प लेना चाहेंगे। तो 5 खोटे पैसे देके जाओ और 1 आना लेकर जाओ, ये यहाँ पर आपको करना है। बाकी कल ताली बजाओ। अब यही कार्य आपको करना है, कुछ देके जाना है और कुछ क्या, बहुत कुछ लेके जाना है, और देके क्या जाना है? 5 खोटे पैसे। बस भगवान हमसे यही मांगते हैं, क्योंकि इन खोटे पैसों ने ही जीवन को बर्बाद किया है, दुखी बनाया है, इस संसार को घोर कलयुग बनाया है, और फिर से अगर सतयुग बनाना है तो हम सबको मिल करके अपनी उंगली देनी है, और इस अपनी उंगली दे करके इस संसार का परिवर्तन करना है, अपने जीवन में परिवर्तन लाकर विश्व को परिवर्तन करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत कुछ सुना आपने, अभी हम यहीं समाप्त करेंगे। 2 मिनट सभी साइलेंस में बैठेंगे, फिर समाप्त करेंगे।